ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के लिए भारत का प्रयास सतत और दीर्घकालिक दृष्टि से प्रेरित है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत नई दिल्ली में किसानों के साथ चर्चा की। राजधानी में मॉनसून के दौरान जल भराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। और रेल मंत्रालय ने कहा है कि 1 जुलाई से IRCTC की वेबसाइट पर केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही तत्काल टिकट बुक करा सकेंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के लिए भारत का प्रयास सतत और दीर्घकालिक दृष्टि से प्रेरित है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे में क्रांति के 11 साल हो गए हैं। इस दौरान बेहतरीन बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, इससे भारत की विकास में गति आई है। उन्होंने कहा कि रेलवे से लेकर राजमार्ग और बंदरगाह से हवाई अड्डा तक भारत का तेजी से फैल रहा बुनियादी ढांचा नेटवर्क जीवन को आसान बना रहा है और समृद्धि को बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज कल्याण केंद्रित विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता जताई। इससे विभिन्न जनहितैषी योजनाएं प्रत्येक नागरिक तक पहुंचेंगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा साझा की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने इन पहलों की प्रभावशीलता और पहुंच में सराहनीय वृद्धि की प्रशंसा की। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक तक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी दे रहे हैं।
पिछले दशक में भारत ने समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण से अभूतपूर्व पैमाने पर बुनियादी ढांचों का विकास देखा है। राजमार्ग निर्माण का दैनिक औसत बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 34 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच चुका है, जो 2014 की तुलना में लगभग 3 गुना है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आर्थिक गलियारे विकसित करने तथा रसद लागत को कम करने के लिए 20,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक 7,80,000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़कों के निर्माण के द्वारा ग्रामीण संपर्क 99% पहुंच गया है, जबकि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया है। रेलवे की क्षमता में व्यापक वृद्धि हुई है। 45,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है तथा 333 जिलों को जोड़ने वाली 68 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। विमानन क्षेत्र में उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत 88 हवाई अड्डों को कार्यरत किया गया है। मेट्रो रेल कनेक्टिविटी अब 23 शहरों में फैल चुकी है, जिसके साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। सागर माला कार्यक्रम के अंतर्गत बंदरगाहों और अंतरदेशीय जलमार्गों से जुड़ी 277 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चिनाम रेलवे ब्रिज, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के इंजीनियरिंग करिश्माओं का अविश्वसनीय प्रतीक है। ये सभी मील के पत्थर उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ साथ संयोजकता में सुधार और 2047 तक विकसित भारत की नींव रख रहे हैं। विष्णु की रिपोर्ट के साथ शक्ति सिंह।
विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर इस अवधि को आर्थिक सुधारों, व्यापारियों के सशक्तिकरण और समावेशी विकास का स्वर्णिम युग बताया है। उन्होंने कहा कि देश में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आज नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में श्री खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की सोच ने भारतीय व्यापारियों को एक नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि आज देश का प्रत्येक व्यवसायी भारत की वैश्विक आकांक्षाओं में आत्मविश्वास से भागीदारी कर रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दिल्ली को स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है। एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार ने नागरिकों को बेहतर, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की दिशा में निर्णय लेते हुए जो फैसले लिए हैं उसके अंतर्गत सरकार अब तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और व्यय वंदना योजना के तहत 3,45,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कार्ड जारी कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इनमें से 1,67,000 कार्ड व्यय वंदना योजना के तहत दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को जारी किए गए हैं। व्यय वंदना कार्ड से 70 साल से अधिक के सभी बुजुर्गों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि राजधानी दिल्ली में अब तक 85 अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है, जिनमें से 60 निजी और 25 सरकारी अस्पताल हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों को इस महीने के अंत तक 30 से ज्यादा नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर समर्पित किए जाएंगे। रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली के किसानों के साथ बातचीत की। उन्होंने सब्सिडी से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तक किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्याओं को दिल्ली सरकार के समक्ष रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र की सभी योजनाएं सही तरीके से लागू हों। कृषि मंत्री ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं और चुनौतियों को समझने में मदद करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी में मॉनसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ और जलभराव से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर दिल्ली सरकार द्वारा फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2025 भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये दस्तावेज बाढ़ की स्थिति में सभी विभागों के लिए एक गाइड बुक के रूप में काम करेगा।
भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की है। नए बदलावों के तहत इस वर्ष 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार ओटीपी सत्यापन अनिवार्य होगा। कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि हर वर्ष मॉनसून के दौरान दिल्ली के नागरिकों को बाढ़ और जलभराव जैसी दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मॉनसून से पहले ही सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर में नालों की सफाई का काम भी तेज कर दिया गया है।
फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2025 के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें जल निकासी प्रणाली, नदी के तटबंध, पंपिंग स्टेशन, नियामक तंत्र, ऑपरेशनल प्लान, सभी मशीनरी की जानकारी और नियंत्रण कक्षों के संपर्क नंबर शामिल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में सेक्टर कमेटियों का गठन किया गया है जो अपने अपने क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन और समन्वय का काम करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम की शुरुआत 15 जून से की जाएगी। यह केंद्र पूरी दिल्ली के लिए एक केंद्रीय समन्वय केंद्र की भूमिका निभाएगा और सभी सिविक एजेंसियों के प्रतिनिधि यहां 24 घंटे तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस साल शहर में सेंट्रल कंट्रोल रूम सहित 15 वायरलेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं जो यमुना के जल स्तर सहित जल जमाव वाले इलाके पर हर समय नजर रखेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि सभी विभाग अपनी टीमों को अलर्ट पर रखे और मॉनसून के दौरान हर आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान के साथ आदर्श, दिल्ली।
दिल्ली सरकार के हीट एक्शन प्लान 2025 के अंतर्गत जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज दरियागंज के एक सरकारी स्कूल में निशुल्क जल एटीएम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जल मंत्री ने घोषणा की कि शहर के स्कूलों और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर अगले वर्ष तक लगभग 1,000 जल एटीएम लगाना सरकार का लक्ष्य है, जिसका लाभ प्रतिदिन 8 से 10 लाख लोगों को मिलेगा। इस अवसर पर मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत स्कूल में पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने पहले 100 दिनों में वो कर दिखाया है जो पिछली सरकार 10 वर्षों में भी नहीं कर सकी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने नई दिल्ली क्षेत्र में व्यापारिक केंद्रों और बाजारों में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज सरोजनी नगर मार्केट में एक विशेष स्वच्छता और जागरूकता अभियान शुरू किया। बाजार को कचरा मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से दुकानदारों को एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध स्रोत पर कचरे को अलग करने और कचरे को कम करने के बारे में जागरूक किया गया। पालिका परिषद द्वारा कनॉट प्लेस के सी और डी ब्लॉक को पहले ही कचरा मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। NDMC ने लोगों से अपील की है कि वे शहर को स्वच्छ हरा भरा रखने में अपना योगदान दें। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित कबीर जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कबीर की वाणी सामाजिक समरसता और अंत्योदय की प्रेरणा देती है। अंत्योदय की मूल भावना ही केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की कार्यशैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली पुलिस का 21वां आत्मरक्षा तकनीक प्रशिक्षण ग्रीष्मकालीन शिविर आज संपन्न हो गया। इस शिविर का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। एक रिपोर्ट।
दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई द्वारा आयोजित इस शिविर में 2200 से अधिक लड़कियों और महिलाओं ने भाग लिया। राजधानी के 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित इन शिविरों में प्रतिभागियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें वास्तविक जीवन के परिदृश्यों पर बल दिया गया। पहली बार आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण जैसे कि हाथ के दस्ताने, किक पैड, पंचिंग बैग, बॉक्सिंग पुतले और सुरक्षा उपकरण पेश किए गए। प्रतिभागियों को सिखाया गया कि पेन, हैंडबैग और दुपट्टे जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं से कैसे आत्मरक्षा कर सकती हैं। रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अगले महीने से केवल वे उपयोगकर्ता ही भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे जिन्होंने आधार के साथ अपना खाता प्रमाणित किया है। एक रिपोर्ट।
भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की है। नए बदलावों के तहत इस वर्ष 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार OTP सत्यापन अनिवार्य होगा। कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए तत्काल टिकटों के लिए बुकिंग के समय उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर सत्यापन किया जाएगा। ये परिवर्तन तत्काल बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं ताकि इसका लाभ सही उपयोगकर्ताओं तक पहुंचे। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आज नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में कार्यस्थल पर योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस सत्र को डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर स्वस्थ वृत्त एवं योग विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने लिया। इस सत्र में विभिन्न कार्य अनुकूल योग अभ्यासों पर इंटरैक्टिव और लाइव प्रदर्शन शामिल थे। राजधानी दिल्ली में आज लोगों को तेज धूप के साथ लू का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश होने की संभावना है। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंडमास्टर अभिजीत गुप्ता ने उलटफेर करते हुए आर्मेनिया के ग्रैंडमास्टर ममिकोन गरिबियान को पराजित करके एकल बढ़त हासिल कर ली है। इस जीत से अभिजीत के 6.5 अंक हो गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के लिए भारत का प्रयास सतत और दीर्घकालिक दृष्टि से प्रेरित है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत नई दिल्ली में किसानों के साथ चर्चा की। राजधानी में मानसून के दौरान जल भराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। और रेल मंत्रालय ने कहा है कि 1 जुलाई से IRCTC की वेबसाइट पर केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।